लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि महिलाओं की गरिमा और अपार मूल्य को हर संस्कृति में मान्यता दी जाए तथा विश्व के विभिन्न हिस्सों में उनके साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त किया जाए। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोता और रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय कार्तिक युवा आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर्सिवल होल्ट के साथ भी बातचीत को प्रस्तुत कर रहे हैं। जीवन में सफलता शिक्षा में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा तथा कैरियर से तय होती है, जो कई युवाओं को हताश, निराश तथा मानसिक रूप से परेशान कर देती है। इसके कारण कई युवा विस्थापन के लिए मजबूर हो जाते हैं। राजनीतिक अराजकता, भ्रष्टाचार एवं सामुदायिक असामंजस्य परिस्थिति को और अधिक जटिल बना रहे हैं। ये कहना है भारतीय कार्तिक युवा आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर्सिवल होल्ट का, जिन्होंने 2018 में रोम में आयोजित युवाओं के सिनेट में भाग लिया था। सिनेट के 5 साल बाद आज उन्हें महसूस हो रहा है कि युवाओं का साहस बढ़ा है, उनकी सोच बदली है और उन्हें लगने लगा है कि वे भी कलीसिया में उतने ही जिम्मेदार और महत्वपूर्ण हैं। पर्सिवल होल्ट आज हमारे सामने युवाओं के कई विचारों और मुद्दों को रख रहे हैं। ये बातें महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इस बदलते युग में कलीसिया के नवीनीकरण के लिए युवाओं की सहभागिता बेहद जरूरी है। तो लीजिए प्रस्तुत है भारतीय कार्तिक युवा आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर्सिवल होल्ट के साथ एक बातचीत। उनके साथ बात कर रही हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की।
तो जो भारत में कॉन्फ्रेंस ऑफ कैथोलिक बिशप्स ऑफ इंडिया है और उसके अंडर में जो यूथ कमीशन है और उसके थ्रू जितने भी यूथ के ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो मैं भी उसमें शामिल था। हमने पूरे इंडिया में अक्रॉस हर डायसेस में क्रिस्तुस विविध बंटवाया था और काफी हद तक रीजन में और डायसेसेस में जा जाके उसके बारे में शेयर किया था। तो मतलब पूरा प्रयास किया था कि पूरे सिस्टम के द्वारा बिशप्स के थ्रू और जितने भी फादर सिस्टर्स रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन थे उनके थ्रू जितना हो सके युवाओं तक एकदम ग्रास रूट्स तक पैरिश में इंस्टीट्यूशन में क्रिस्तुस विविध पहुंचाया जाए और उसका संक्षिप्त में जो वो फ्रांसिस कहना चाह रहे हैं या दर्शा रहे हैं या जो उम्मीदें हैं उसको पहुंचाया जाए। तो काफी हद तक युवाओं को पहुंचाया गया तब से लेकर अभी तक और ये जारी है।
अच्छा, इसका अभी क्या परिणाम दिखाई दे रहा है?
इसका परिणाम मैं कहना चाहूंगा, एक जो बहुत ही मूल रूप से दिखाई पड़ रहा है दिखने में है कि एक तो युवाओं को मैं उनमें जो वो थोड़ा डर था या फिर थोड़ा इनसिक्योरिटी था कि हमारा चर्च में क्या रोल है वो कम हुआ है मेजर रूप से। उनमें वो कॉन्फिडेंस आया है कि या वो सोचने का विचार बदला है कि नहीं, हम भी कलीसिया में उतने ही जिम्मेदार हैं, हम भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं और हमारा विश्वास भी उतने ही मायने रखता है और हमें भी कुछ करना है, हमारी भी एक आवाज है और हमारा भी एक जिम्मेदारी बनता है विश्वास के प्रति, कलीसिया के प्रति। तो एक ये बहुत मेजर बदलाव आया है जो मैंने खुद अनुभव किया है ओवर द इयर्स। युवाओं में ये एक बदलाव आया, मतलब तब से जैसे मैंने बोला ये काम अभी भी जारी है कि अब मैं जब युवाओं से मिलता तो दिखता है कि हाँ, अब हमें पैरिश काउंसिल में बोलने दिया जाता है या बिशप के साथ बातचीत होती है या डायसिस में हम ज्यादा शामिल हैं अब, या फिर इवन चर्च के स्ट्रक्चर में डिसीजन मेकिंग में थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। तो एक ये मेजर बदलाव है। दूसरा बदलाव है बिशप्स में, क्लर्जी में और रिलीजियस में युवाओं को देखने के नजरिया में भी बदलाव आया है
जी।
कि उसके पहले युवाओं के बारे में सोचा नहीं जाता था कि उनको भी इन्वॉल्व करना है डायसिस के या फिर स्ट्रक्चर के मामलों में, पर उसके बाद युवाओं को इन्वॉल्व करने का वो इंटरेस्ट आया है या फिर ना एक वो बदलाव आया है कि हाँ युवाओं को भी, चाहे वो डायसिजन बॉडीज में हो या नेशनल लेवल पे हो या इवन पैरिश में हो, उनका मतलब इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, उनका वो जो नया नजरिया है देखने का वो भी जरूरी है। तो ये बदलाव भी, तो ये दो चीजें मेरे ख्याल से मेजर बदलाव आया है उसके बाद। और बाकी फिर ऑफकोर्स काफी चीजें इधर उधर इनिशिएटिव में और युवाओं को थोड़ा इंडिपेंडेंटली कुछ चीजें सोच के आगे बढ़ने में भी एक बदलाव आया है।
जी, बहुत अच्छी बात, इस तरह की बदलाव देखने को मिली है। और दूसरी ओर ये भी देखते हैं कि हम भारत में युवा कई समस्याओं से जूझ रहे हैं, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, भेदभाव या कई जगह धर्म के नाम पर भी उनको कई प्रकार की समस्याएं झेलने पड़ रही हैं। तो ऐसे में युवा अपने को कैसे पाते हैं, अपने विश्वास में मजबूत बने रहने की कोशिश करते हैं
इस परिस्थिति में? मतलब जो मैंने जितना अनुभव किया है और जो सुनने में आता है कि कैथोलिक युवाओं में विश्वास उनका मजबूत है, डर बिल्कुल नहीं है कि हम ईसाई हैं और अभी के इस वातावरण में कुछ डरने की जरूरत है या फिर, क्योंकि मैंने, मुझे याद है 2018-19 में कई ऐसे किस्से भी हुए थे जब युवाओं के ऊपर अटैक हुआ या फिर मतलब कुछ भी ऐसा कुछ हुआ है, भेदभाव हुआ है समाज में, पर वो डरे नहीं, वो डट के रहे और उन्होंने बोला भी और मतलब वो विश्वास के लिए खड़े रहे कि नहीं हम नहीं डरेंगे, नहीं हटेंगे इस चीज से। तो ये मेरे ख्याल से एक है माइंडसेट युवाओं में, इवन कैथोलिक युवाओं में, कि भले कितना कुछ हो रहा हो पर वो मजबूती, वो कॉन्फिडेंस, वो साहस है कि नहीं हम रहेंगे, डट के रहेंगे। और अदर देन जो युवाएं अपने लाइफ के लिए और अपॉर्चुनिटीज के लिए माइग्रेट कर रहे हैं, पर जो दूसरे विश्वास को लेके या इस परिस्थिति को लेके, डर को लेके, मेरे ख्याल से ज्यादातर ये भी नहीं है कि नए देश को छोड़ के जाना है या ऐसा कुछ।
वैसे वेल होल्ट जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। श्रोताओं, ये थे भारतीय कैथोलिक युवा आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर्सिवल होल्ट। और अब आए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।
जाग उठो, आगे बढ़ो मेरे प्यारे युव साथियों, जाग उठो आगे बढ़ो मेरे प्यारे युव साथियों, विश्वास में जल्दी ही निकल जाता है, कुछ करके दिखाना है आज हमें, वक्त जल्दी ही निकल जाता है। दुख दर्द में इंसान डूबा है, प्यार के प्यासे मसीह पुकारे, दुख दर्द में इंसान डूबा है, प्यार के प्यासे मसीह पुकारे,
आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका सिंदूरी, लेखिका है अंतरा करवड़े। श्रोताओं, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव देश के युवाओं को गर्त की दिशा में ले जा रहा है। आज की युवा पीढ़ी पाश्चात्य संगीत की दीवानी बनती जा रही है। आज के युवा भारतीय संगीत की समृद्ध परंपरा से दूर होते जा रहे हैं। युवा पीढ़ी की महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ चुकी हैं कि संस्कारों के लिए उनके जीवन में कोई स्थान नहीं रहा। वे भारतीय सभ्यता व संस्कृति को भूलने लगे हैं। माता पिता उनकी बेहतरी के लिए कोई सुझाव देते हैं तो बच्चे उसे मानने के लिए तैयार नहीं होते, फौरन उनके सुझाव को नकार देते हैं। माँ की ममता, स्नेह और धैर्य तथा पिता का अनुशासन और सही मार्गदर्शन बच्चों को सही गलत के बीच सही कदम लेने में सबसे प्रमुख भूमिका रखते हैं। वे अपने बच्चों को जागरूक कर भविष्य की सही राह दिखा सकते हैं। वैसे ही जैसे आज की नाटिका में सिद्धार्थ और कस्तूरी ने किया, तो आइए सुनते हैं अंतरा करवड़े की लिखी नाटिका सिंदूरी।
अरे कस्तूरी, कस्तूरी कहाँ हो? अच्छा, तो रियाज चल रहा था। चलने दो, चलने दो। मैंने सोचा मैं भी थोड़ा बहुत आनंद ले लेता है?
बस अभी क्लास खत्म की है मैंने। बैठिए, मैं चाय बनाकर लाऊं।
अरे चाय तो मैंने बनाकर भी रखी है।
सिंडी, सिंडी,
सिंदूरी, तुम्हारी फ्रेंड आई है।
पता है ना मम्मा, इतनी जोर से चिल्लाने की क्या जरूरत थी? जा रही हूँ मैं।
अरे सिंदूरी, अपनी मम्मी से ऐसे बात करते हैं क्या? अरे सुनो तो।
रहने दीजिए ना सिद्धार्थ, कुछ भी कहना बेकार है इन दिनों इसे।
अरे लेकिन ये भी कोई तरीका है? और ये उसकी दोस्त क्या बुला रही थी उसे, सिंडी? ये भी कोई नाम हुआ भला?
सिद्धार्थ आप नहीं जानते, हमारी सिंदूरी इन दिनों पूरी पूरी बदल गई है। उसे ना अपना नाम पसंद है, न ही हमारे जीने का ढंग। देखा आपने कैसे कपड़े पहनकर गई है। और सिद्धार्थ, इन सभी में बुरी बात तो ये लगती है ना कि वो आजकल मेरी क्लास में भी नहीं बैठती। कहती है कि उसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत ही नहीं सीखना।
क्या ये सब क्या है कस्तूरी? मेरी सिंदूरी बिटिया इतनी बदल जाएगी? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। कितने चाव से इसका नामकरण किया था हमने, सिद्धार्थ और कस्तूरी की बिटिया सिंदूरी। दोनों का नाम मिलकर कितना प्यारा सा नाम है इसका। जानती हो ना कस्तूरी, इसके नामकरण पर कितनी बधाइयां मिली थी हमें।
जानती हूँ सिद्धार्थ, लेकिन ये सब कहने से अब कुछ भी नहीं होने लगा। उसे लगता है कि उसका सिंदूरी नाम आउट ऑफ फैशन है, सभी उसके नाम पर हंसते हैं, इसीलिए वो आजकल अपना नाम सभी को सिंडी बताती है।
और ये अपने साथ बड़ा सा क्या इंस्ट्रूमेंट लेकर गई कस्तूरी?
सिद्धार्थ ये ऑक्टोपैड है।
क्या, ऑक्टोपैड?
हाँ सिद्धार्थ, कस्तूरी श्रीवास्तव, शास्त्रीय गायिका की बेटी सिंदूरी उर्फ सिंडी, इन दिनों किसी अजीब से नाम वाले रॉक बैंड में छोटे छोटे कपड़े पहनकर ऑक्टोपैड बजाती है।
बस कस्तूरी बस, कितने चाव से मैंने आज का संडे प्लान किया था। सोचा था कि तीनों मिलकर पंडित विद्याधर जी का शास्त्रीय गायन सुनेंगे और आज सिंदूरी के पसंद के रेस्तरां में खाना खाएंगे, लेकिन इसके रंग ढंग तो कुछ बिगड़े हुए लग रहे हैं।
पता नहीं सिद्धार्थ, पता नहीं कहां से इसे अपने जैसी पसंद की कुछ सहेलियां मिल गई हैं। सिंदूरी तुम जानते हो ना, पहले कितना अच्छा शास्त्रीय गा लेती थी।
हाँ हाँ,
उसकी आवाज की रेंज भी अच्छी है, लेकिन उसका ताल पक्ष सबसे अच्छा है, इसी के चलते वो अपने रॉक बैंड में ऑक्टोपैड बजाती है।
ये सब कुछ तो मेरे लिए किसी झटके जैसा है कस्तूरी। मैं महीने भर के लिए बाहर क्या गया, यहाँ तो सब कुछ बदल गया। लेकिन ये तो बताओ कि रविवार को सुबह सुबह ये गई कहाँ है, ऐसी अजीब सी बेढंगी ड्रेस पहनकर?
सिद्धार्थ ये सभी सहेलियां अपनी आदर्श मानती है पॉप स्टार मिशेल को। उसी के चित्र वाली लॉकेट पहनती है, उसके रिकॉर्ड को दीवानों की माफिक सुनती है और उसकी नकल करती है अपने बैंड में। आज उस मिशेल के रिकॉर्ड कंपनी के कुछ लोगों के सामने इनका प्रेजेंटेशन है।
हे भगवान, क्या मिलता है ये सब करते हुए इन्हें? क्या मौलिक भारतीय संगीत का मुकाबला ये कम कपड़े पहनने वाली, चिल्ला चिल्ला कर गला फाड़ने वाली लड़कियां और उनके रॉक बैंड कर सकते? अरे कहां पंडित विद्याधर जी जैसे संगीत मर्मज्ञ और कहां वो पॉप स्टार मिशेल, इन दोनों में कोई भी समानता है क्या?
अरे मान लिया कि नहीं है, लेकिन ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप?
आज आने दो उसे, ऐसी डांट पिलाऊंगा कि याद रखेगी।
सिद्धार्थ प्लीज, उसे कुछ नहीं कहना। ये उम्र ही ऐसी होती है कि बच्चे बगावती होना चाहते हैं। और जहां तक उसके बिगड़ने की बात है, मुझे मेरे शास्त्रीय संगीत पर पूरा भरोसा है, एक ना एक दिन वो जरूर अपने सही रास्ते पर आ ही जाएगी।
जैसी तुम्हारी मर्जी, अब चलो चाय फिर से गर्म करता हूं। देखो तो बाहर बूंदे भी पड़ रही हैं। चलो आज गैलरी में बढ़िया मेघ मलार की सीढ़ी लगाकर चाय का लुत्फ लेंगे।
चलिए।
अरे सिंदूरी, क्या हुआ बेटे, तुम रो रही हो? कस्तूरी,
हाँ?
यहाँ आओ जरा।
क्या हुआ? अरे सिंदूरी, सिंदूरी एकदम क्या हुआ बेटे? तुमने मिशेल का लॉकेट तोड़कर फेंक दिया?
इस मिशेल को कोई हक नहीं है मेरी आदर्श बनने का।
सिंदूरी, सिंदूरी देखो बेटा, तुम बताओगी नहीं तो हमें कैसे मालूम होगा कि हुआ क्या है? देखो आज तुम्हारा मिशेल की रिकॉर्ड कंपनी के सामने प्रेजेंटेशन था ना, वहां कुछ परेशानी हुई क्या?
और नहीं तो क्या, उन लोगों का कहना है कि हम लोग उनके देश की संस्कृति से मेल नहीं खाते, इसलिए हम मिशेल के गानों को लेकर रॉक बैंड नहीं बना सकते। ये कैसा इंसाफ है भला?
देखो सिंदूरी, तुम यदि वाकई होशियार हो तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि वे लोग किस ओर इशारा कर रहे हैं।
वो तो बस इतना कहना चाह रहे हैं कि हम उनके रिकॉर्ड्स नहीं गा सकते। उनका देश का कोई बहुत बड़ा हवा है क्या?
बिल्कुल नहीं है, फिर भी तुम जैसी दीवानी लड़कियां उस हवे के पीछे भागती हैं और अपना सोने जैसा देश पीछे रह जाता है।
आप कहना क्या चाहते हैं पापा?
देखो सिंदूरी, बुरा मत मानना, मैं देख रहा हूं कि तुम में काफी सारे बदलाव आ रहे हैं। ना तो सही तरीके के कपड़े पहन रही हो, ना बातचीत का ढंग है और ना ही व्यवहार का। क्या पहले तुम ऐसी थी?
लेकिन पापा मैं ये
देखो सिंदूरी, देखो हम कितने भगवान हैं कि हमारे घर में तुम्हारी मां जैसी शास्त्रीय गायिका मौजूद है। ये संस्कृति छोड़कर यदि तुम दूसरे देशों की नकल करने जाओगी तो कोई भी तुम्हें यही कहेगा। तुम ही बताओ ना, यदि कोई अपनी मां की ही इज्जत नहीं करेगा और सामने वाले को यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न करेगा कि उसके मन में बड़े बूढ़ों को लेकर बड़ा आदर है, तब ऐसे व्यक्ति का कौन विश्वास करेगा?
मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही हूं पापा।
देखो सिंदूरी, उन सभी जजेस को यह मालूम होगा कि भारतीय शास्त्रीय संगीत कितना समृद्ध है। ऐसे में यदि तुम लड़कियों ने अपने संगीत की ही लाज नहीं रखी तो वे तुम्हें अपने संगीत की धरोहर कैसे दे सकते हैं? तुमसे तो वे ही अच्छे हैं जिन्होंने अपने देश की संस्कृति की खातिर तुम्हारे जैसे रॉक बैंड को परफॉर्म करने से मना कर दिया। कम से कम उन्हीं से सीख लो कि संस्कृति की इज्जत करना क्या होता है।
सॉरी मम्मी, पापा, आई एम सॉरी।
कोई बात नहीं बेटे, तुम्हें देर से ही सही अपनी संस्कृति की गहराई समझ में आ गई, यही हमारे लिए बहुत है।
मम्मी
जी। बेटा,
मुझे चाबी चाहिए।
कौन सी?
आपके म्यूजिक रूम की, मेरा मतलब है रियाज के कमरे की।
सिंदूरी, अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे अपर्णा सिंह, संदीप दुबे और अंतरा करवड़े। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।